भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरंध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कहाँ से है प्रभु जी? आठवां अध्याय करना है। पिछली बार मुझे याद है कि मैंने आपको कुछ श्लोक कराए थे आठवें अध्याय के ही। कौन कौन उपस्थित था, कौन कौन से श्लोक हुए थे, कुछ आइडिया है? आइडिया नहीं है, फोन वाला आइडिया है वैसे आइडिया नहीं है। चलिए 11 12 13 कोशिश करते हैं। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्दयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्षये। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्तयो वीतरागः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्षये। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षटचक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भावों के मध्य में स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षटचक्र योग अभ्यास ना आता हो, तो कृष्ण अगले श्लोकों में उसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं, ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार तथा ब्रह्म दोनों एक रूप हैं। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से ही गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचारी जीवन अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जो ब्रह्मचारी सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। बिना ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। 12वें श्लोक का मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करना तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर में केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यह है 11वां 12वां और 13वां श्लोक। अब यहाँ पर जो है समझने की बात क्या है, क्या बात हमको समझाई जा रही है इन श्लोकों के द्वारा? आठवें अध्याय के अंदर तीन प्रकार की भक्ति की बात हुई है। पहले जो हमने श्लोक किए हैं उनके अंदर आई है कर्म मिश्रित भक्ति, जहाँ कर्म को करके आप किस तरह भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कर्मों के द्वारा कौन से कर्म किए जाएं, किस प्रकार के कर्म किए जाएं, जो कर्म जो है कर्म योग आपका भक्ति योग में कन्वर्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली भक्ति हो जाए। ये जो श्लोक चल रहे हैं ये है योग मिश्रित भक्ति। यहाँ पे जो ध्यान योग में हमने चर्चा करी पीछे छठे अध्याय के अंदर, उसी के बारे में ये जो है श्लोक चल रहे हैं कि किस प्रकार आप ध्यान योग के द्वारा मन को वश में करके भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। इसके बाद के जो श्लोक आएंगे उनके अंदर आएगी केवल्या भक्ति, अर्थात शुद्ध भक्ति जिसमें ना कर्म का मिश्रण है और ना योग का मिश्रण। ये तीन प्रकार की चर्चा हो रही है। तो अभी यहां पर जो है चर्चा हो रही है योग मिश्रित भक्ति की, अर्थात ध्यान योग मिश्रित भक्ति की। इसमें जो है श्लोक में सबसे पहला शब्द आया है यत अक्षरम। यत अक्षरम, अक्षर क्या है? अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर, जिसका क्षरण ना हो। क्षरण होना क्या है? नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। तो अक्षरम शब्द जो है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? फहूम। अक्षरम शब्द जो है भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ है। और कौन सा अक्षर भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ है? ओम। ओम शब्द का अर्थ क्या है? ओम हम कहते हैं ना, ओम ओम, ऐसे लंबी आवाज में भी कहते हैं, ओम छोटी आवाज में भी कह देते हैं, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। ओम का अर्थ क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसको कैसे डिफाइन करते हैं अक्षरम को? अकार क्या होता है? अकारात्मक क्या है? अकारात्मक, उकारात्मक, मकारात्मक, तीन इस्तेमाल हुए। तो ओम में अकारात्मक क्या है, उकारात्मक क्या है और मकारात्मक क्या है? हम बार बार ओम अज्ञान तिम्रंधस्य शब्द ओम से स्टार्ट करते हैं, ओम से करते हैं ना। तो ओम को जो है हम हर मंत्र के पहले उसका उच्चारण करते हैं। तो अकारात्मक क्या होता है, उकारात्मक क्या होता है और मकारात्मक क्या होता है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि उपनिषद है, अथर्ववेद के अंदर एक उपनिषद है, गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद, उसके अंदर इसका उल्लेख है। एक राम उत्तर तापनीय उपनिषद है और एक गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद है। इन दोनों उपनिषदों के अंदर जो है ओम शब्द की व्याख्या की गई है। ओम शब्द जो है इसके अंदर जब संधि विच्छेद करते हैं, जब इनके अक्षर अलग अलग करते हैं, इसके जो सिलेबल्स हैं उनको अलग अलग करते हैं, तो पांच चीजें बनती हैं। एक है आ, दूसरा है ऊ और तीसरा है मा। अब इसके ऊपर एक अर्धचंद्र होता है, ऊपर बनाते हैं ना एक बिंदु होता है एक, तो अर्धचंद्र में जो ऐसा आधे चांद की तरह जो डंडी है उसको कहते हैं तुरीय, और ऊपर जो है एक बिंदु है। उपनिषद कहता है कि जो आ शब्द है ओम के अंदर वो संकर्षण रूप बलराम जी के लिए इस्तेमाल होता है। इट रिप्रेजेंट्स बलराम जी। बहुत डिटेल्स हैं, डिटेल्स की चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। उसको बलराम जी की प्रेजेंटेशन माना जाता है। और यही जो आ है जब राम अवतार होता है तो लक्ष्मण जी के लिए प्रयुक्त होता है। बलराम जी जो है उन्हीं का एक्सपेंशन है अनंत शेष, जो शेषनाग के रूप में विश्व का आश्रय है। उनके फनों के ऊपर जो है ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, संपूर्ण विश्व जो है स्थापित है। इसलिए उनको जो है वैष्णवम कहा जाता है। वो बाहर की सब बातें जानते हैं, रोज एवरीथिंग। इसलिए उनको जो है बहिप्रज्ञ भी कहा जाता है, और सदैव जागरूक रहते हैं। अगर वो सो जाएंगे तो क्या होगा? ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो जाएगा। ही इज ऑलवेज अवेक। जो ऊ है जिसको उकारात्मक कहा जाता है, वो शब्द जो है कृष्ण अवतार के अंदर प्रद्युमन जी के लिए इस्तेमाल होता है, प्रद्युमन जी को रिप्रेजेंट करता है। और राम अवतार के अंदर वो शत्रुघ्न जी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब आप ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो उनके अंदर इन चारों का, दो भी और बताऊंगा, चारों का स्मरण ऑटोमेटिकली हो जाता है। प्रद्युमन जी जो है वो कामदेव के अंश है, कामदेव का अंश उनके अंदर सन्निहित है। और काम का अंश होने से कामनाएं आती हैं और कामनाएं मन से आती हैं। इसलिए जो है प्रद्युमन जी जो है, शत्रुघ्न जी जो है, वो आपके मन के अंदर स्थित है। मन के अंदर स्थित होने का मतलब क्या है कि आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को जानते हैं। ही नोज एवरीथिंग। आप सोचें कि मैं यहां बैठा हूं और मेरे मन में कोई विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को कौन जानेगा? सॉरी, भगवान जो आपके हृदय में स्थित हैं वो उनको जानते हैं। प्रद्युमन जी जो है जितने भी सूक्ष्म लोक हैं उन सबका भार संभालते हैं, सारे सूक्ष्म जगत में व्याप्त हैं। और मन की जो आपकी सूक्ष्म वासना है उसके बारे में भी जानते हैं, अर्थात जब आप निद्रा में हो, स्वप्न में हो, तो उसकी भी सब बातें जो हैं उनको मालूम, अर्थात वो आपके अंतर की सब बातें जानते हैं, इसीलिए अंतर प्रज्ञ कहलाते हैं। प्रज्ञ मीन्स ज्ञान, अंतर का ज्ञान है उन्हें। सॉरी, मां शब्द जो मकारात्मक है वो इस्तेमाल होता है अनिरुद्ध जी के लिए और राम अवतार में भरत जी के लिए। इनको कहा जाता है प्राज्ञ रूप। प्राज्ञ रूप मीन्स बुद्धिमता, बुद्धिमान। जो आपके अंदर बुद्धि है वो इनकी वजह से आती है। सोया हुआ मनुष्य जो है किसी भी भोग की कामना नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं देखता, इंद्रियां और मन दोनों सो जाते हैं, परंतु इनको जो है प्राज्ञ बोला गया है। प्राज्ञ का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि के स्वामी। और आपकी बुद्धि कुशाग्र होती है, तेज हो जाती है, या बुद्धिमान हो जाते हो, तो उसका कारण ये है। अगर ये एक्टिव है, आपने मतलब अपनी बुद्धि को जागृत कर लिया है, अर्थात आपकी बुद्धि जो है विवेकमयी हो गई है, भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में, यत्ता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यते इन्द्रियाणि प्रमथीनि हरन्ति प्रस्फुटं मनः, कि इंद्रियां इतनी बलवान और वेगवती हैं उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उनको वश में करने का प्रयत्न कर रहा। परंतु अगर आप जो है अपनी बुद्धि को और अपने मन को और अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, तब आपके पीछे जो है ना तो आपको स्थूल भोगों की कामना रहती है और ना सूक्ष्म भोगों की कामना रहती है। इंद्रिय भोगों से आप विरक्त हो जाते हो, छुटकारा पा जाते हो। शर्त क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि वश में होने चाहिए। अनिरुद्ध जो है आनंद के भोगता है, कामना नहीं है। उसका उदाहरण मिलता है भरत जी की लाइफ से। राज्य उनको कैकेयी के वर मांगने से अनायास उपलब्ध हो गया, तो उन्होंने मांगा नहीं था। भरत जी ने राज्य मांगा था क्या? इच्छा करी थी, कामना करी थी। अपने आप मां के वर मांगने से उनको राज्य की प्राप्ति हो गई, परंतु क्या उन्होंने उस राज्य को भोगा? भोगा क्या? नहीं भोगा। स्टेड अवे। किसी ने जगह देखी है जहां पे उन्होंने 14 बरस बिताए हैं? हैज समबडी सीन दैट प्लेस? कहां है? चित्रकूट में राम जी रहे थे 11.5 साल। भरत जी जो है अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर जगह है नंदीग्राम, वहां पे रहे। अयोध्या में भी नहीं रहे, जो मेन टाउन है उसमें नहीं रहे, वहां से दूर रहे। अब बचते हैं इसके अंदर तुरीय, जो ऐसे अर्धचंद्राकार का डंडा है, और ऊपर एक बिंदु। जो तुरीय है, जो अर्धतुरीय कहलाता है, इसको ये रिप्रेजेंट करता है वासुदेव को। वासुदेव भगवान की एक्सपेंशन है। और राम अवतार में रिप्रेजेंट करता है राम जी को। संपूर्ण विश्व इन्हीं के आश्रय है, इन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित है। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सबके उद्गम और उत्पत्ति का कारण हूं। इसके बाद संपूर्ण जगत का कारण है, सबके अंतर्यामी है, समस्त भूतों की मतलब समस्त प्राणियों की, समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति इनसे होती है, और जब प्रलय होता है तब इनमें सब समा जाते हैं। अब आता है उसके बाद बिंदु। बिंदु क्या है? बिंदु है जब कृष्ण अवतार होता है तो बिंदु है राधा जी, और जब राम अवतार होता है तो बिंदु है सीता जी। तो जब आप भगवान के इस ओम अक्षर का, ओम अक्षर से उच्चारण करते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं, तो आप संपूर्ण बलराम जी, अनिरुद्ध जी, प्रद्युमन जी, वासुदेव जी और राधा जी सबका सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से उच्चारण हो जाता। अब यहां कहा जा रहा है कि जो वेदों के ज्ञाता हैं, तो वेद क्या है? व्हाट आर वेदास? वेद कितने हैं और वेदों में क्या है? शॉर्ट में बात करेंगे 2-3 मिनट के अंदर। एक वेद था यजुर्वेद, उस एक वेद से 4 वेदों की रचना की गई। क्या नाम है 4 वेदों के? ऋग्वेद। ऋग्वेद में से ही सामवेद निकाला गया बाद में। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के अंदर 1,00,000 मंत्र हैं। मंत्र जो है एक शब्द से आरंभ होकर 59 शब्दों तक के हैं, 59 वर्ड्स, इतने लंबे लंबे, इतना सा भी है और इतना भी है। 1,00,000 मंत्रों के अंदर से 80,000 मंत्र जो हैं वो कर्म कांड के हैं, कि आपको इस भौतिक संसार में रहने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, जो आनंद चाहिए, जो भोग चाहिए, उनको किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उन मंत्रों में इन सब का उल्लेख है। 16,000 मंत्र जो हैं वो ज्ञान कांड के हैं, आपको ज्ञान देते हैं, दे गिव यू नॉलेज। और 4000 मंत्र जो हैं वो उपासना कांड के हैं, भक्ति के हैं, कि आपको किसकी भक्ति करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, उसका ज्ञान दिया जाता। हर वेद के 4 अंश हैं, हर वेद को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ। कौन कौन से हैं? पहला भाग कहलाता है संहिता, दूसरा भाग कहलाता है ब्राह्मण, तीसरा भाग कहलाता है आरण्यक और चौथा भाग कहलाता है उपनिषद। संहिता के अंदर आपको मंत्र मिलते हैं जिनके द्वारा आप सुख भोग प्राप्त कर सकते हो। ब्राह्मण के अंदर गृहस्थों के द्वारा कौन से नियमों का पालन करना है, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, किससे क्या चीज मांगनी है, किसकी पूजा करने से क्या उपलब्ध होगा, वो सारा का सारा ज्ञान। आरण्यक के अंदर है, आरण्यक कहते हैं वन को, वन मतलब जो वानप्रस्थ में चले जाते हैं उनके लिए जो है उन मंत्रों का उल्लेख है, जिसमें आपने ब्राह्मण के अंदर या संहिता के अंदर जो पढ़ा है, जो सारा जीवन किया है, उसका फिलोसॉफिकल एनालिसिस है, और परंतु अब जो आपको करना है उसके बारे में ज्ञान है कि वानप्रस्थ में आपको क्या करना चाहिए। और उपनिषद जो है इसको कहा जाता है वेदांत, सारे शास्त्रों का निचोड़ जो है उपनिषद के अंदर है। तो वेदों के ये 4 अंग हैं, इन 4 अंगों में जो वेदों के ज्ञाता है, वेदों का ज्ञान, ज्ञान मीन्स संपूर्ण ज्ञान, भगवद गीता के अंदर 2 अध्याय के 44वें श्लोक में चर्चा आती है कि कुछ लोग वेदों के जो है जो प्रथम भाग है जिसमें कर्म कांड की विधि बताई गई है, भोग ऐश्वर्य कैसे प्राप्त करना है, उसके द्वारा मोहित हो जाते हैं और अपने कर्म शुरू कर देते हैं, पर जीवन का लक्ष्य जो है भगवान को प्राप्त कैसे करना है, जो वेदों के अंत में दिया हुआ है, वहां तक नहीं पहुंचते हैं और भटक जाते हैं और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्र में फंसे रहते हैं। अब यहां चर्चा आ रही है कि आपको ओंकार का उच्चारण करना है, आप वेदों का ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान वेदों का प्राप्त करें, क्या इस जीवन में संभव है, आसान है क्या? इस 700 श्लोक की भगवद गीता कितने लोगों ने पढ़ी है, कितनी बार पढ़ी है, हाथ खड़ा करो, बेहिचक हो गए, शर्माओ नहीं, कितनों को समझ में आई है? पढ़ने का अर्थ क्या, व्हाट इज रीडिंग, कि कितनों को भगवद गीता का संदेश जो है समझ में आया है। अगर 700 श्लोक की भगवद गीता हमसे नहीं समझी जाती जीवन भर, तो हम लोग जो है 1,00,000 मंत्रों के वेदों का ज्ञान, जिसमें कि 108 उपनिषद हैं, मैंने पढ़े हैं, उड़ जाता है दिमाग, समझ में नहीं आता, फेल हो जाता, आसान नहीं है गीता, आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी बुक टू अंडरस्टैंड, कहना बड़ा आसान है, समझना आसान नहीं है। इतिहास, महाभारत कितने लोगों ने पढ़ी है, 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000, आप एक चैप्टर पढ़ के और उसको दोहरा दीजिएगा, शॉर्ट में एक पैराग्राफ में सुना दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा, बैठता ही नहीं, एक एक चैप्टर के अंदर इतना सम्मान लिख दिया व्यास देव ने, इतना कुछ कह दिया, सोचिए जरा कि व्यास देव जी ने सारे महाभारत की रचना कर ली है, अब परेशान है लिखे कौन, तो ब्रह्मा जी का आह्वान किया, ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे बताइएगा कि मैंने जो है महाभारत की रचना कर ली है उन लोगों के लिए जो कि वेदों को नहीं पढ़ पाते हैं, जो कि उपनिषद नहीं पढ़ पाते हैं, उनको मैं कथा के रूप में, कहानियों के रूप में फिलॉसफी समझाना चाहता हूं, मैं उनको ज्ञान देना चाहता हूं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं अर्थात जो ब्राह्मण नहीं है या स्त्रियां हैं, जो उन दिनों स्त्रियां एजुकेशन नहीं लेती थी, स्त्रियों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज नहीं थी उन दिनों, बहुत लिमिटेड थी स्त्रियां जो कि गुरुकुल में या जैसे गार्गी थी, इसमें विदुषियां बहुत कम थी, तो उनके लिए मैंने ग्रंथ की रचना करी है, मैं चाहता हूं ये लिपिबद्ध हो जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं गणेश जी का आह्वान करो, गणेश जी लिखेंगे, तो गणेश जी का आह्वान किया जाता है, गणेश जी उपस्थित होते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने जो है महाभारत की रचना कर ली है, मैं चाहता हूं इसको लिपिबद्ध करना, तो आप इसको कृपया मेरे लिए लिपिबद्ध कर दीजिए। तो गणेश जी ने छूटते ही कहा रुकोगे नहीं, रुकोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, सोच लेना, कंटीन्यूअस प्रवाह में, लगातार प्रवाह में, बिना फुल स्टॉप, बिना कॉमा, बिना रुके, बिना सांस लिए तुम्हारे मुख से प्रवाहित होना चाहिए। अब वेद व्यास जी फंस गए, बड़ा मुश्किल काम है, 1,00,000 श्लोक में एक साथ बोल दूंगा बिना रुके, तो इतने फंस गया, उन्होंने भी बुद्धि लगाई, कहते हैं मैं करूंगा परंतु आप समझे बिना नहीं लिखेंगे, आप पहले समझिए श्लोक को फिर लिखिए। तो गणेश जी ने ऐसी बात हो रही तेजी में सोचा नहीं, बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक, ओके डन। 8,800 श्लोक 1,00,000 में से ऐसे हैं जो गणेश जी को भी समझ में नहीं आए, फंस गए, उनको समझने में टाइम लगा इमीडिएटली, तो वहां जो गैप मिलता था उसमें फिर श्लोकों की रचना हो जाती थी, फिर एक श्लोक कह देते थे ऐसा टेढ़ा सा, फिर उसको लिखने में समझने में सोचने में टाइम लगता था, फिर बाकी श्लोकों की रचना हो जाती थी। इस तरह करते 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 महाभारत कंप्लीट हुई। 1,00,000 श्लोक हैं उसके अंदर। कितने लोगों ने पढ़ी है पुराण, कितने लोगों ने पढ़े हैं पुराण, देखे इन्हें 100 करोड़ श्लोक थे पुराणों के अंदर। मत्स्य आप पढ़ेंगे ना, जब भगवान मत्स्य की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आप प्राप्त करेंगे कि जो मधु नाम का राक्षस है, जो दैत्य है, दानव जो है, वो सारे श्लोकों को ब्रह्मा जी से चुरा के सारे शास्त्रों को जल में ले गया था। तो भगवान ने जो है मत्स्य अवतार लेके मधु नामक राक्षस का, इसलिए मधुसूदन कहलाते, उसका वध किया और सारे के सारे जो है लाके वापस ब्रह्मा जी को दिए। तो ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम पुराण निकले थे। अब 100 करोड़ में से इस समय आज की तारीख में 4,00,000 उपलब्ध है, सिर्फ 4,00,000 श्लोक है। बाकी दूसरे ब्रह्मांडों में कहीं कहीं कुछ गायब हो गए, कुछ खो गए, कुछ लुप्त हो गए, और बाकी जो है दूसरे ब्रह्मांडों में है। यहाँ पे 4,00,000 श्लोक है। आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप कितने श्लोक रोज पढ़ सकते हो समझ के। मंदिर में रोज सवेरे भागवत महापुराण से 1 श्लोक होता है, माता जी ठीक कह रहा हूँ, एक ही होता है, कभी कभार 2 हो जाएंगे। भगवत गीता भी 1 ही श्लोक करते हैं, आज मैं खींच के 2 और कर दूं तो बाई चांस बात अलग है, वरना 1 ही होगा। आप 10 श्लोक करिए, मान लीजिए 100 साल की आयु है तो कितने श्लोक हुए, 3,65,000, 35,000 श्लोकों का डेफिसिट चल रहा है। कंडीशंस अप्लाई, रोज 10 श्लोक करेंगे, किस दिन से, माँ के गर्भ से बाहर आते ही 10 श्लोक बोलने हैं, उआ उआ नहीं करनी है, 10 श्लोक पहले दिन, और आयु 100 साल होनी चाहिए जो कि है नहीं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं पा रहा है। इसीलिए जो है भगवत गीता का जो ज्ञान दिया गया है उसके अंदर ये चर्चा है कि आप इसको अगर कर लेते हो तो सारे के सारे शास्त्रों का ज्ञान इसमें डाल दिया गया। तो वेदों का ज्ञान होना बड़ा मुश्किल है, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके अब आप ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं। लास्ट मिनट पे जीवन के अंतिम समय में व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है तो क्या ओंकार का उच्चारण कर सकता है? यहाँ वेंटिलेटर लगा हुआ है, यहाँ से भी कुछ लगा हुआ है, इधर भी कुछ लगा, इधर भी कुछ लगा, पेशाब में नलकी लगी हुई है, मतलब हर जगह प्रॉब्लम है। तो आप बेहोश हो, आपको अपने नाम नहीं पता, स्मरण नहीं, कहाँ लेटे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ ज्ञान नहीं है, तो उस वक्त आप उच्चारण कैसे करोगे, मुश्किल है। चलिए, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्म क्या है, व्हाट इज ब्रह्म? गोलोक वृंदावन नहीं लिखा यहाँ पर, भगवान का धाम नहीं लिखा, क्या लिखा है? ब्रह्म में प्रवेश कर। तो ब्रह्म का अर्थ है बड़ा, बड़ा जिस, जो बड़ा करने की शक्ति रखता है, बड़ा करने की, और जो स्वयं भी बहुत बड़ा हो सकता है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान का ब्रह्म स्वरूप क्या है? भगवान को कहते हैं ना ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, सत, चित, आनंद, 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, और भगवान क्या है, तीनों में भेद क्या है? ब्रह्म किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, और भगवान किसे कहते हैं? क्या एक ही हैं तीनों, या तीनों अलग अलग हैं? इन तीनों के अंदर भेद क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, बताइए। यस माता जी बताइए, व्हाट इज इम्पर्सनल फॉर्म, व्हाट इज दैट ब्रह्म ज्योति? ब्रह्म को साधारण भाषा में जब हम कहते हैं भगवान, सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद है, सत चित और आनंद। सत का अर्थ क्या होता है? सनातन, इटर्नल। सनातन का अर्थ है था, है और रहेगा। तो जब इटर्नल कहते हैं तो इटर्नल का मतलब यह है कि उसको हम ब्रह्म के बराबर कंपेयर करते हैं। ब्रह्म भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नो टू ओपिनियंस, उसको अलग नहीं मानना। परंतु भगवान का एक जो ऑरा है, जो भगवान के अंगों से कांति निकलती है, वो इतनी बड़ी है कि उसको कैलकुलेट करना और नापना कठिन है, असंभव है। भगवान की जो एनर्जीज हैं, जो भगवान की शक्तियां हैं, वो अनंत हैं, असीम हैं, उनको नापना मुश्किल है। तो इसलिए उसको कहा जाता है भगवान का निराकार स्वरूप, आकार नहीं है। इस बल्ब का आकार है, रोशनी का आकार नहीं। अगर हॉल बड़ा हो जाएगा तो रोशनी सारे हॉल में फैल जाएगी, छोटा हो जाएगा तो छोटे हॉल में सिमट जाएगी। बल्ब का साइज सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो ये साकार है, और रोशनी निराकार। तो रोशनी को एनर्जी माना गया है, एनर्जी है इस बल्ब की एनर्जी क्या है, रोशनी है। तो भगवान की जो एनर्जी है वो भगवान के अंगों से निकली हुई रोशनी है, उसको ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है, उसको केवल ब्रह्म भी कहा जाता है, भगवान के निराकार स्वरूप को भी ब्रह्म कहा जाता है। और भगवान की जो एनर्जीज है जो हमको विजिबल नहीं है इस रोशनी से अलावा, उनको भी ब्रह्म कहा जाता। अब ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, तो यहां शब्द जो ब्रह्म में प्रवेश करने का है वो इस्तेमाल हो रहा है विरजा नदी के पार परफ्यूम, जिसमें कि भगवान की रोशनी है, और रोशनी के परे फिर बैकुंठ है, और बैकुंठ से ऊपर गोलोक वृंदावन है। तो वो लोग जो है ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो मुक्ति क्या है, व्हाट इज मुक्ति, मुक्ति किसे कहते हैं, फ्री फ्रॉम दिस, फ्री फ्रॉम द बैंडे बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मुक्त होना। मुक्त आदमी किससे होता है, बंधन से, रस्सी से बांधा, रस्सी से मुक्त हो गया, मतलब व्यक्ति जो है बंधन से मुक्त होता है। तो बंधन किस चीज का है, सिंपल बंधन है कर्म के फलों का, वही तो बांध रहे हैं आपको, क्या बांध रहे हैं। और अगर आपके कर्म फल समाप्त हो जाएंगे तो आप ठाकुर जी के धाम गए, बांधा किसने हुआ, कर्म के फल। तो आपके ऊपर बंधन है कर्म के फलों का, जो कर्म आपने किए हैं उसके जो फल आपको भोगने हैं, पुण्य फल हो तो भोगना है, पाप फल हो तो भोगना है, दोनों को भोगना है। तो उस भोगने का जो कारण है वो है आपके कर्मों का फल। तो बंधन है कर्म के फल का। तो मुक्ति किससे हुई, कर्म के फल से मुक्ति प्राप्त। रस्सी क्या है, कर्म के फल की रस्सी है, उन फलों ने आपको बांध रखा है, उन्होंने आपके ऊपर जो है लपेटा दे रखा है, वो छुटकारा होगा तो आप ठाकुर जी के धाम चले जाओगे, उन कर्म के फलों से छुटकारा पाना है, तब आप जो है मुक्ति लाभ कर सकते हो। अब आता है यहां पर जो चर्चा चल रही है वो है कि किस प्रकार से आप इंद्रियों की विरक्ति, क्या पॉसिबल है, क्या कहते हैं इसको, 10 मिनट में अष्टांग योग की बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या उसके अंदर। रोज सवेरे योग होता है, टीवी देखो ना तो 2000 आदमी बाबा जी के सामने जमीन में लेटे हुए हैं, योग कर रहे हैं, कोई अनुलोम विलोम कर रहा है, कोई कपाल भारती कर रहा है, कोई बाएं दाएं हाथ पैर घुमा रहा है। व्हाट इज एग्जैक्ट अष्टांग योग, ज्यादा चर्चा न करके शॉर्ट में चर्चा करेंगे उसकी। 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम क्या होता है, यम यमराज नहीं, यम क्या है, पतंजलि योग शास्त्र के अंदर यम के 5 अंग बताए गए। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है आपके अंदर एक मन कोमल होना चाहिए, अहिंसा का मतलब क्या है, मन कोमल होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, सत्य झूठ नहीं, मन में छल नहीं। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है किसी के हक को चुराना नहीं है, छीनना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि मन से वाणी से शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में हर प्रकार के भोग का त्याग करना, भोगों के प्रति आसक्त नहीं होना है, न शरीर से होना है, न वाणी से होना है, न मन से होना है। और अपरिग्रह कि शरीर के निर्वाह के लिए जो वस्तु चाहिए उसको इस्तेमाल करना है, संग्रहण नहीं करना, जमा नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, संग्रह नहीं करना, ये बेसिक है। इसके बाद आते हैं नियम, उसमें भी 5 अंग है। 5 अंग क्या है, शौच, शुचिता, बाहर से भी और भीतर से भी पवित्रता चाहिए। तो मन को पवित्र करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शरीर का शुद्धिकरण और मन का शुद्धिकरण, दो कार्य। संतोष, प्रिय हो अप्रिय हो, सुख हो दुख हो, उसमें संतोष रखना, सेटिस्फाइड, टेंशन नहीं पाल। तपस्या, तप करना, विपरीत परिस्थितियों में अपने को रख के नियमों का पालन करना है, नियमों का पालन करना ही तपस्या है। अब चाय नहीं पीते हो, तामसिक पदार्थ नहीं खाते हो, वगैरह वगैरह सॉरी, जो 4 नियम बताए गए हैं ये तपस्या के अनुरूप। स्वाध्याय, शास्त्र का अध्ययन, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का कीर्तन, और स्वयं भी करना और दूसरों से भी करवाना। और उस पल है ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना, भगवान की आज्ञा का पालन करना अर्थात शरणागति हो जाना। ये पांच नियम हैं। इसके बाद है आसन, ऊंचा नहीं हो नीचा नहीं हो, व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, अमृतचर्म होना चाहिए, पद्मासन चौकड़ी लगा के बैठना चाहिए, आंखें आधी खुली होनी चाहिए आधी बंद होनी चाहिए, पीठ सीधी होनी चाहिए, सारे के सारे उसके नियम हैं। अर्थात अल्टीमेट क्या है कि स्थिरता पूर्वक बैठना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, पर सुख पूर्वक बैठना। मैं तो आसन लगाऊंगा और घुटने दर्द कर रहे हैं तो हर बार ध्यान घुटनों में जा रहा है कि भगवान में जा रहा है? इसमें जा रहा, घुटनों में जा रहा है ना, आसन लगाया मैंने रोज सवेरे, आसन के अंदर जो है मेरा ध्यान जो है घुटनों में ही रहता है क्योंकि दर्द करते हैं, तो ऐसे आसन का फायदा है। तो यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम जो है वो अपने आप में एक विधि है, जिस विधि का पालन करना है आपको। पर क्या आप प्राणायाम की विधि का पालन कर पाते हैं? क्या अनुलोम विलोम ही प्राणायाम है, उससे एक्स्ट्रा कुछ है? कैसे करना है उसको, व्हाट इज द प्रोसेस? प्राणायाम जो है कैसे किया जाता है कि बाहरी वायु को आप भीतर ले जाते हैं, भीतर की वायु को बाहर निकालते हैं, परंतु बीच में एक स्थिति आती है जब उसको बैलेंस कर लेते हैं आप, बैलेंस कुंभक, उसको बैलेंस कर देना आप। वो बैलेंस होना बड़ा मुश्किल है, ये यूं गाड़ी की तरह निकालना डालना प्रोसेस नहीं है, उसको बैलेंस करना जो है, दोनों की गति को रोक देना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब आती है इसके बाद चर्चा प्रत्याहार। प्रत्याहार किसे कहते हैं? ये जिसने कर लिया ना वो जीत गया। प्रत्याहार है कि इंद्रियों को इंद्र विषयों से अलग करना। आंख देख रही है परंतु अनदेखा कर देना, कान सुन रहा है अनसुना कर देना, त्वचा फील कर रही है उसको फील को अपनी त्वचा से अलग कर देना। पोस्टर लगा हुआ है बड़ा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्शन हो गई तो आप उसमें लिप्त हो गए, अलिप्त रहना है। दिख रहा है, आंख है खुली है, दिखेगा जरूर, दिखने को आप मना नहीं कर सकते, परंतु आप उसमें लिप्त नहीं हुआ। वो लिप्तता ना हो, वो लेवल अचीव करना क्या आसान काम है? Is it easy? Is it possible? Not possible. जिसने उसको अचीव कर लिया, होता क्या है मैं आपको बताता हूं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर के अंदर फ्रंट पेज में i5 एप्पल का एक एडवर्टिजमेंट है, देखा किसी ने? न्यूज सेकंड पे, थर्ड पेज पे है, फर्स्ट पेज पे उसका एड है। जैसे ही आप अखबार उठाते हो उसका इतना फुल साइज एड, इतना बड़ा फोन लगा हुआ उसके अंदर, एप्पल i5, iPhone 5 जो भी है। देखा, अभी खबरें पढ़ने के लिए अखबार लिया था, खबरें तो अभी देखी नहीं, तो अभी बाद में आएंगे, तो पहले उसने आकर्षित कर लिया। मित्र से मिले, यार आज ना मैं आईफोन खरीद के लाया हूं, आईफोन 5 खरीद के लाया, सवेरे मैंने देखा था, आज मैंने सुन लिया। देखा था ना, मैंने सुना तो नहीं था ना, अब सुन लिया, अब सुना, मित्र के पास है तो दिखा भी दे, तो देख भी लिया, उसने उसकी क्वालिटीज बता दी, सब कुछ समझा दिया। तो मेरा मन जो है अब ये करता है कि मेरे पास जो फोन है उसको दिया जाए त्याग और ये एप्पल का आईफोन 5 ले आया जाए। इंद्रियों का उसके विषय से आकर्षण हो गया। सहेली के घर गए, डबल डोर बड़ा अलमारी की तरह, गोदरेज की अलमारी की तरह बड़ा फ्रिज लगा हुआ, आ रहे हैं ना आजकल ऐसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं अलमारी की, आकर्षण आ गया, गुण पता लग गए, क्वालिटीज पता लग गई, देख लिया बड़ा आनंददायक फ्रिज है। घर आए, पति से कहा, क्या तुम 165 लीटर का फ्रिज 35 साल से लिए घूम रहे हो? बदलो, ऐसा फ्रिज लेके आओ, ऐसा फ्रिज चाहिए। ले भाई, 1.5 लाख रुपए का फ्रिज है तो क्या हो गया, उसके यहाँ है कि नहीं? अरे भाई वो रिश्वत खाता है, मैं तो खाता नहीं हूँ, तो खा लो ना, किसने मना किया? पकड़ा जाऊंगा, वो आज तक पकड़ा गया क्या? और सजा आज तक किसे हुई? मिनिस्टर को नहीं, तुम्हें कहां से हो जाएगी? ले आओ। अब उस फ्रिज को प्राप्त करने के लिए बेईमानी हो गई, चोरी कर ली, नकारी मारी, कुछ भी किया और फ्रिज आ गया, पाप का कार्य हुआ। इंद्रियों का इंद्र विषयों से संयोग हुआ। प्रत्याहार में क्या है कि इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना है, जो कि एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जॉब है, हो ही नहीं पाता। अब इसके बाद आती है चर्चा धारणा। धारणा में क्या है, मन को एकाग्र करना है, स्थिर कर देना है भगवान में। अपना तो धारणा घुटने में फंसी हुई है, अभी तक दर्द कर रहा है ना जोड़। मैं तो सवेरे 8 से लेके और 8:30 तक ध्यान लगाता हूँ, पर बीच में दूध वाला आ जाता है वो ध्यान डिस्टर्ब कर देता है, अखबार वाला आ जाता है वो डिस्टर्ब कर देता है, और बच्चे की स्कूल की वैन आ जाती है वो डिस्टर्ब कर देती है। तो मैंने टाइम बदल दिया है, क्या है अब 3 से 4 कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, 3 से 4 ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते लगाते कराटे शुरू हो गए, नींद आ जाती है। अभी आप लगा के देखिए, आंखें बंद करके आप कभी ध्यान में बैठिए। मैं बैठा हूँ, एक बार एक श्री श्री जी आए थे हमारे मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने कहा ध्यान लगाने की विधि सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, उन्होंने सिखाई, आधे डॉक्टर्स हो गए 15 मिनट हॉल में, आधे डॉक्टर्स हो गए। इट्स टेक्स टू इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट है धारणा में, बैठना बड़ा कठिन है। अब आप लगाते हो ध्यान, अभी धारणा हुई है, अभी ध्यान पे आइए जरा। ध्यान में क्या होता है कि मन जो है विचलित नहीं होना चाहिए, एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर नहीं होना चाहिए, मतलब आपके चिंतन में केवल भगवान होने चाहिए और कोई नहीं, नो वन एल्स। जैसे नदी में प्रवाह होता है और नदी लगातार चलती रहती है, रुकावट नहीं होती उसके अंदर, ये नहीं कि आज नदी खड़ी हो गई, लगातार प्रवाह रहता, इसी तरह मन का प्रवाह लगातार भगवान में रहना चाहिए, वहां से रुकना नहीं चाहिए। पॉसिबल है? यहां से बाहर निकलते ही सांसारिक बातें शुरू हो जाएंगी, यहां बैठे बैठे ध्यान आ रहा होगा, लेट हो रहे हैं, कोहरा ना आ गया हो भगवान में निरंतर ध्यान लगा रहे। और ध्यान लगाने में क्या होता है, तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ऐसे ध्यान त्रिपुटी कहते हैं। एक होता है ध्याता, ध्यान लगाने वाला स्वयं मैं, दूसरा है ध्यान का प्रोसेस, और तीसरा है ध्याता जिस पे ध्यान लगाया जाता है। आप ध्यान में बैठते हो, मेडिटेट करते हो, तो क्या भगवान पे ध्यान लगता है कि संसारिक अमेरिका भी याद आ रहा है और पाकिस्तान भी याद आ रहा है, चाइना भी याद आ रहा है, घर भी याद आ रहा है, ऑफिस भी याद आ रहा है, मायका भी याद आ रहा है, ससुराल भी याद आ रहा है, सुख भी याद आ रहे हैं, दुख भी याद आ रहे हैं, भगवान पे ध्यान लगता है क्या? ध्याता। अब जब समाधि होती है, समाधि के अंदर जो है भगवान का ही ध्यान रहे, अपना भी ध्यान ना रहे। समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि के अंदर जो है आपके पास कुछ भी नहीं है, और संप्रज्ञात में तीनों है, अपना भी ध्यान है, ध्यान का प्रोसेस भी है, और ध्याता जिसके प्रति ध्यान लगा रहे हैं उसका भी ध्यान है। जब आप असंप्रज्ञात में आ जाएंगे तो आपका अपना बारे में भूल जाएंगे, यही बात लिखी है, अपना भी ध्यान नहीं रहेगा, मैं क्या कर रहा हूं उसका भी ध्यान नहीं रहेगा, किसका ध्यान रहेगा? केवल भगवान का। तो अंतिम समय में आप जो है इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति के योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करना, मतलब इनका जो है संसार से रिएक्शन, संसार से कनेक्शन, संसार से संबंध समाप्त कर देना। क्यों? ध्यान से सुनिए, आप रात में सोए, अच्छी नींद आ रही है, फ्रिज कहाँ पड़ा आपको पता, उसका बत्ती गुल हो गई है, फ्रिज की नहीं चल रहा मालूम है आपको क्या, पानी की मोटर खराब है पता है क्या, गाड़ी पंचर पड़ी है मालूम है क्या, आंख खुलते ही सब बातें याद आ जाती, और बातें याद आते ही टेंशन शुरू होती है, अरे पानी की मोटर नहीं चल रही, नहाएंगे कैसे, नहाएंगे कैसे, गाड़ी पंचर पड़ी है, मेरे को तो पहिया बदलना नहीं आता है, सवेरे सवेरे ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, जाएंगे कैसे, रात का सामान बचा हुआ था, दूध रखा था, आटा रखा था, फ्रिज नहीं चल रहा है, खराब हो गया होगा, टेंशन आ गई नहीं आ गई, कब आई, आई समझिएगा बात को, रात में सोते हुए आपका भौतिक संसार से संबंध याद नहीं था, और जागते ही भौतिक संसार से संबंध स्थापित हो गया और टेंशन शुरू हो गई। समाधि के अंदर आपको भौतिक, जागते हुए भौतिक संसार से संबंध समाप्त करना है, फिनिश करना है, उससे लिप्त नहीं होना है, उसमें डूबना नहीं है, देन यू विन, तब आप जो है इस स्थिति में आते हो कि आपने समस्त द्वारों को बंद कर दिया, नाभि से लेके गर्दन तक जितना एरिया है सारा हृदय देश कहलाता, नाभि से लेके और गले तक, कंठ तक, सारा एरिया जो हृदय देश कहलाता है, जिसमें हृदय स्थापित है, तो मन को वहीं कंट्रोल करना है, उससे बाहर नहीं निकलने देना, मन को वश में करना है, मन उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, और प्राण वायु को सर पे केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ये योग मिश्रित भक्ति का दूसरा श्लोक है, और तीसरे श्लोक के अंदर चर्चा आती है, इस योग्याभ्यास में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करना है तो अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। इसके परपट के लास्ट जो है तीन लाइनें हैं उसको समझ लीजिएगा, कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन जाते हैं। सत चित आनंद में, हम सिर्फ अभी सत के प्लेटफॉर्म पे थे, ब्रह्म ज्योति के प्लेटफॉर्म पे थे। चित का मतलब होता है चेतना, चित का मतलब होता है ज्ञान, चित का मतलब होता है नॉलेज। जब आपको ज्ञान होता है, जब चेतना होती है, तब आप महसूस करते हो कि भगवान परमात्मा रूप में आपके हृदय में विराजमान है, तब आपको भगवान के परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होता है। तो सत और चित जब कहते हैं तब हम जो है भगवान के परमात्मा स्वरूप तक पहुंचते हैं। जब सत चित आनंद कहते हैं तो आनंद का अर्थ है भगवान के सगुण सकार स्वरूप को समझना, उनकी आराधना करना, उनकी पूजा अर्चना में लगना और उनकी सेवा में अपने आप को लगा देना। तो संपूर्ण भगवान जो है वो सच्चिदानंद है, अर्थात सत चित आनंदमय है, इटर्नल नॉलेज एंड ब्लिस, तीनों चीजें आती। तो जिसने ये समझ लिया वो तो जाता है गोलोक वृंदावन। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं, बैकुंठ कहलाते हैं। मतलब जो परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, जो इस योगी हैं, ध्यान योगी हैं, वो बैकुंठ तक जाते हैं। पर निर्विशेषवादी जो केवल ज्ञान ही प्राप्त करते रहते हैं और भगवान के निराकार स्वरूप का चिंतन करते हैं, वो केवल ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। अब चॉइस आपकी है, या आपको प्रेसिडेंट हाउस में रहना है प्रेसिडेंट की तरह, समझिएगा बात। पांच प्रकार की मुक्ति बताई गई है, कौन कौन सी है? यस माता जी, मुक्ति के पांच तरीके बताओ जरा। फाइव टाइप्स ऑफ मुक्ति, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्टी। क्या फर्क है इनमें? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई फाइव टाइप, व्हाई नॉट वन टाइप? मुक्ति मीन्स मुक्ति, पांच तरह की क्यों, पांच प्रकार की क्यों, व्हाई फाइव टाइप्स? आपको कैसी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ मुक्ति यू वांट? ऑप्शन है, पांच प्रकार की मुक्ति है, आपको कैसी चाहिए, किस प्रकार की चाहिए? आपने भारतवर्ष में एंट्री के लिए अप्लाई कर दिया, उसने कहा ठीक है, भारतवर्ष के अंदर जो है अगर नक्शा आप देखेंगे तो जो समुद्र का तट है उसमें कुछ एरिया जो है भारतवर्ष के साथ अटैच्ड है, जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। इतने नॉटिकल माइल्स जो है वो इंडिया के पास है, फिर पाकिस्तान का, फिर अरब सागर का, मतलब हर एक कंट्री का समुद्र पे अपना अपना कंट्रोल है। तो उसने कहा ठीक है, आप हमारे समुद्र के उस हिस्से के अंदर तक आ सकते हैं, उससे आगे की परमिशन नहीं है। ब्रह्म ज्योति तक आ सकते हैं, उसके आगे नहीं आ सकते, ठीक है? सायुज्य हो गया, अब भगवान से जुड़ गए पर रहे हैं ब्रह्म ज्योति में। अब उसने कहा कि सर मेरे को थोड़ा अंदर आने दीजिए, थोड़ा सा, ठीक है कन्याकुमारी तक आ जाओ, ऊपर दिल्ली तक नहीं आ सकते। तो मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट में आपको आना परमिट कर दिया, मतलब भगवान ने कहा मेरे लोक में आ जाओ, सालोक्य मुक्ति दे दी। उसने कहा साहब थोड़ा दिल्ली तक आने दो ना, केरल तो बहुत दूर है, थोड़ा और पास आने दो। तो आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपके जो गुण हैं, उनके अनुसार आपको परमिशन मिली कि आप दिल्ली तक आ जाइए। कितना आपका भगवान से प्रेम है, कितनी आपने सेवा करी है, कितना भगवान आपसे प्रेम कर रहे हैं, उसी के अनुसार आपको और ऊपर अपने पास पास आने की परमिशन देते जाएंगे। अच्छा तुम मेरे लोक में तो आ गए हो, मेरे समीप आ जाओ, सामीप्य, समीप मीन्स मेरे निकट, समवेयर नियर नियर मी। अच्छा पहुंच गए, भगवान से और ज्यादा प्रेम था मेरा, बहुत ज्यादा सेवा थी। भगवान ने कहा इसको ना मैं अपने जैसा रूप देता हूँ, तोता नहीं बनाता, बतख नहीं बनाता, बिल्ली नहीं बना रहा, चूहा नहीं बना रहा, हा? मैं इसको चिड़िया नहीं बना रहा, अपने जैसा रूप देता हूँ। तो सारूप्य एक जब भगवान जैसा रूप प्राप्त हो गया, बहुत ही गंभीर और बहुत ही असीम प्रेम है भगवान से, आपने ऐसी सेवा करी है कि भगवान को आपने जीत लिया है। भगवान कहते हैं अच्छा मेरे जैसा ऐश्वर्य भी प्राप्त कर, साष्टी। प्रेसिडेंट कहता है मेरे जैसी गाड़ी में बैठेगा, मेरे जैसे मेरे बाग में सैर करेगा, मेरी डाइनिंग टेबल पे खाना खाएगा, मेरे जैसे कमरे में रहेगा, अर्थात यू आर इन द अंतरंग, जो 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 इंटरनल परिकर होते हैं, जो क्लोजेस्ट लोग होते हैं, यू विल बी वन ऑफ दोस। तो इसी तरह पांच प्रकार की मुक्ति है, जिस प्रकार का आप कर्म करोगे भगवान के प्रति, उसके अनुसार आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। और जैसी मुक्ति आपको मिलेगी उसी के अनुसार आप भगवान के उतना निकट, उतनी ही सेवा में वहां जाके रहो। दिस इज द जस्ट। पर समस्या होती है, मैंने पिछली बार भी कोट किया था, आज फिर कहता हूं दोबारा से रिमाइंडर के लिए, कि अंत समय में पत्थर की तरह और लकड़ी की तरह हो जाता है आदमी, सूखी लकड़ी और पत्थर की तरह निश्चेष्ट, कुछ कर नहीं पाता। तो वरा भगवान पृथ्वी को उत्तर देते हैं कि जिसने स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण किया है, जब जीवन के अंतिम समय में वो वात और कफ आदि दोषों से ग्रसित हो जाता है, पत्थर की भांति निश्चेष्ट, सूखी लकड़ी की भांति निश्चेष्ट हो जाता है और मेरा नाम स्मरण करने में असमर्थ रहता है, तब मैं उसका स्मरण करता हूँ, तब उसे परम गति की ओर ले जाता हूँ। तो यही है, भक्त को भक्तों का जब संग करते हैं, भक्तों का फायदा करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो उसका लाभ क्या होता है, बिगनिंग कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होती है? आनंद चैतन्य प्रभु 9:08 हो गए, 5 मिनट और ले लूं? नो प्रॉब्लम, आप सबसे पूछ लेता हूँ, 5 मोर मिनट्स चलेंगे? विष्णु जी से नारद जी की चर्चा हो रही है तो नारद जी से विष्णु जी पूछते हैं कि तुमने जो है सारे संसार के अंदर भ्रमण किया है, इस संसार के अंदर जो पांच चीजें हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनमें से कौन सी चीज जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा बढ़िया? तो क्या बोला नारद जी ने, कौन सी है, क्या है? पृथ्वी। बोले पृथ्वी, अरे तीन चौथाई तो पानी है इसके अंदर, समुद्र है, एक चौथाई पृथ्वी है, तो समुद्र ज्यादा पावरफुल है या पृथ्वी ज्यादा पावरफुल, मतलब जल ज्यादा पावरफुल है कि पृथ्वी तत्व ज्यादा पावरफुल है? तो कहते हैं भगवान जल ज्यादा पावरफुल है, तो पृथ्वी से जल पे आ गए। कहते एक समय आया था जब बड़ी समस्या हो गई थी, तो एक मुनि थे अगस्त्य मुनि, उन्होंने समुद्र के जल को पी लिया था, समुद्र सूख गया था। तो मुनि ज्यादा पावरफुल है कि समुद्र ज्यादा पावरफुल है? बोले कि मुनि ज्यादा पावरफुल है। बोले अच्छा, ऐसा है कि वो मुनि जो है जब वो उसका देहावसान हो गया, अप्रकट हो गया, तो आकाश में एक सितारे की तरह हो गया, असंख्य सितारे हैं, लैक्स लैक्स लैक्स, उसमें एक छोटा सा सितारा है मुनि, तो आकाश ज्यादा पावरफुल है कि मुनि ज्यादा पावर, कौन पावरफुल है बताइए? आकाश। बोले कि एक मैंने अवतार लिया था वामन, उसे मैंने दूसरे पग में तीनों लोग नाप दिए थे, आकाश भी नाप दिया था, अब बताओ कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं कि आकाश ज्यादा पावरफुल है, कौन पावरफुल है? सब मानते हैं ना कि भगवान से बढ़ के पावरफुल और कोई नहीं। नारद जी ने प्रणाम किया, दंडवत किया, बोला महाराज भगवान मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली कि आपसे ज्यादा पावरफुल तो कोई है ही नहीं। कहता अच्छा एक बात बताओ, मेरे को भक्त अपने हृदय में कैद कर लेता है भक्ति के द्वारा, तो मैं पावरफुल हूं कि भक्त पावरफुल है, कौन पावरफुल है? हु इज पावरफुल? मैं उसकी कैद में हूं, उसके बस में हूं, भक्त के बस में है भगवान। अरे अर्जुन ने कहा मेरा रथ चलाइए, भगवान कहते अच्छा चलो, जब मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, बोलो ले चलता हूं, तो कौन पावरफुल है? भक्त। तो भक्त का संग करेंगे तो भगवान प्राप्त होंगे, दिस इज द फॉर्मूला। हरे कृष्ण।
प्रश्न है किसी का
बताइए।
कृष्ण बाबू जी, पुण्यकर्म बंधन का कारण है, तो क्या पुण्यकर्म बंद कर देने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो किस प्रकार से कृष्णा को अर्पण करने चाहिए?
पुण्य कार्य क्या है ये बताइए पहले।
जैसे दीन दुखियों की सेवा
और
दान पुण्य, दान
और फिर दो मिनट और लगेंगे, हैं दो मिनट। एक बच्चा सड़क पे बैठा रो रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं आपके बात का पूरा उत्तर दूंगा। 3 साल की आयु है, उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम, बोला बिट्टू। मम्मी का नाम, मम्मी। पापा का नाम, पापा। कहाँ रहते हो, इशारा कर, रो रहा है। व्यक्ति ने कहा है कि बच्चा रो रहा है, इसको बहुत तकलीफ लगती है, भूखा होगा बेचारा, पता नहीं किसका बच्चा है, कहाँ छूट गया है, कब से यहाँ बैठा है। वो गया दूध ले आया, बिस्कुट ले आया, ब्रेड लाया, उसको लाके दे दिया, खिला पिला दिया, बाकी साथ रख दिया और चला गया। थोड़ी देर बच्चा खेला, फिर रोना शुरू कर दिया। दूसरा व्यक्ति निकल रहा था, उसने देखा बच्चा रो रहा है, बिस्कुट भी रखे हैं, ब्रेड भी रखी है, दूध भी रखा है, तो बीमार होगा, थोड़ा पेट वेट में दर्द होगी, बदहजमी हो गई होगी, कुछ तकलीफ होगी, डॉक्टर को दिखा देते हैं। उसने डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने दवाई की शीशी दे दी, एक दवा पिला दी, दवा की शीशी पास रख दी और चला गया। तीसरा व्यक्ति आया, दवाई भी रखी है, खाने का सामान भी रखा है, बच्चा रो रहा है, इसका ऐसा करते हैं, इसको अनाथालय में दे देता हूँ, यहाँ सड़क पे पड़ा रहेगा, कोई गाड़ी वाड़ी चढ़ जाएगी इसके ऊपर, मरा जाएगा, इसको एक मैं अस्पताल अनाथालय में उसको भर्ती करा दिया जाएगा। पहले व्यक्ति ने भंडारा खिलाया, दूसरे व्यक्ति ने अस्पताल डॉक्टर से इलाज कराया, तीसरे ने अनाथालय चलाया। परा दुखा दुखी, उसके दुख में दुखी है, सेवा कर रहे हैं, मानव मात्र की सेवा हो रही है। चौथा व्यक्ति आया अनाथालय में, एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, कौन बच्चा रो रहा है? एक नया बच्चा आया है, कल कोई छोड़ गया था। अच्छा दिखाओ, बच्चे को लाया गया, बच्चे को देखा, फोटो खींची, जाके अखबार में छाप दी। नेक्स्ट डे माता पिता आ गए, बच्चा माता पिता से ऐसे मिला, माता पिता बच्चे से ऐसे मिले, दोनों का आपस में मिलन हो गया। चौथा व्यक्ति अच्छा है कि पहले 3 अच्छे हैं, कौन अच्छा है? तीनों ने पुण्य का कार्य किया, चौथे ने माता पिता से मिलवाया है। हम गाइडेंस दे रहे हैं माता पिता से मिलने की, पिता से मिलने की। इस कौन जो है भगवत भक्ति में लगे हुए, ना तो हम भंडारा चला रहे हैं, ना हम अनाथालय चला रहे हैं, ना हम हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम चला रहे हैं आध्यात्मिक रोगों, आध्यात्मिक इलाज के द्वारा आपके भौतिक रोगों का इलाज। हु इज द बेस्ट? बेस्ट इज हु वर्क्स फॉर द फादर, बेस्ट इज हु वर्क्स फॉर कृष्णा। कैसे करता मैं आपको बताता हूं। आप कर्म करते हैं अपने लिए, फल भोगना पड़ता। पुण्य का करें शास्त्र के अनुसार तो फल भोगना पड़ेगा, पाप का करेंगे शास्त्र के विरुद्ध तो फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस फल का सृजन किया है और उसको भोगने के लिए शरीर चाहिए। अब आपको क्या करना है? आपको करना है अपने स्वामी के लिए कार्य। जल्लाद ने 3 आदमियों को फांसी लगाया है, उसको सजा नहीं मिली। जल्लाद को घर में 1 आदमी को मार दिया है तो सजा का हकदार हो गया है। पहली बार उसने स्वामी के लिए कार्य किया है, दूसरी बार अपने लिए कार्य किया है। अपने लिए कार्य करता है तो फल भोगना पड़ता है, स्वामी के लिए करता है तो फल नहीं भोगना पड़ता। अब आपके पास स्थिति क्या है कि आप किसके लिए कार्य करेंगे? तो भगवान कहते हैं, बड़ा स्पष्ट भगवान ने कहा है भगवद गीता के अंदर, ध्यान से पढ़िएगा। भगवान कहते हैं, यत करोषि यत सनासी यत जुहोषी ददासी यत यत तपस्यासी कौन्ते तत् कुदुर्ष्वा मदर्पणम्। और अगले श्लोक में कहते हैं कि शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधना है। पहले श्लोक में कहा है, कुंती पुत्र तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। अगले श्लोक में कहा, इस तरह तुम कर्म के बंधन इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। आपको दान देना है ना, दीजिए, पहले भगवान को दीजिए, फिर उठा के उसको दे दीजिए। मैंने गाड़ी में बैठा था, शीशा खोला, 10 रुपए दे दिए, उसने जाके शराब पी ली, पर स्त्री संबंध कर लिया, उसका आधा फल मुझे भोगना पड़ेगा, आधा वो भोगेगा, आधा मैं भोगूंगा, क्योंकि मैंने उसे उसके लिए प्रोत्साहित किया। आपको मंदिर के अंदर से एक मिठाई का टुकड़ा मिला प्रसाद के रूप में, आपने नाली में फेंक दिया, उसका फल पुजारी भोगेगा या आप भोगोगा? कौन भोगेगा? प्रसाद था, कौन भोगेगा फल? आप भोगोगे। आपने भगवान को दान दिया, 1,00,000 दीजिए, 2,00,000 दीजिए, 10,00,000 दीजिए, 2 करोड़ दीजिए, 100 करोड़ दीजिए, भगवान को पहले अर्पित करिए, उसके बाद उसको आप बांटिए पब्लिक के अंदर, तो आपको उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। यू विल बी रिलीज्ड ऑफ इट। जो खाते हो, अपने लिए बनाते हो, अपने लिए खाते हो, तो पाप खाते हो। 3rd अध्याय का 13वां श्लोक है, पहले भगवान को खिलाते हो फिर उसको खाते हो तो पाप से मुक्त हो जाते हो। आपने भिखारी को खिलाना है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, बैठो, भोग लग रहा है, अभी भोग लग के आता है, प्रसाद के रूप में हम भी खाएंगे, तुम भी खाना, खिलाते हैं, भंडारा नहीं करते हम लोग। अभी खिचड़ी बंट रही बाहर, पहले ठाकुर जी को भोग लगा, उसके बाद बांटी जा रही गरीबों के लिए, नो प्रॉब्लम। आपकी रसोई चलती है, पहले भगवान को खिलाया जाता है, उसके बाद खिलाया जाता है। यस, अगर हम समझते हैं कि उचित पात्र है और हमारी जेब में दान दिया हुआ पैसा है तो हाँ, आप जाइए ना आपकी रसोई में, कोई 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 उसमें लिमिटेशन नहीं है। पचकुइयां रोड कितने लोग गए, गोल चक्कर देखा है पचकुइयां रोड का? नहीं, एक सिंपल